الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدات وقال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه میرے عزیز اور محترم بزرگوں سب احترام بھائیوں یہ جو اسلامی مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ یہ مہینہ ہمارے دین میں اسلام میں اور شریعت مطہرہ میں بہت قدر و منزلت والا مہینہ ہے یہ اور پوری امت اس بات پہ اتفاق کر چکی ہے کہ اس مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور اسی مہینے میں आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफाते हसरत हयात भी हो चुकी है। अगरचे हमारे इस्लाम के बहुत बड़े बड़े उलमा में से कुछ उलमा ने मसलन अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, मौर्रिख हैं, मुफस्सिर हैं, उन्होंने कि जब मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख वो मुहर्रम में नकल की है, रबीउल अव्वल में नकल ही नहीं की, लेकिन वो मशहूर कौल नहीं है, मारूफ कौल नहीं। इसी तरह हमारी शरीयत में नेक आमाल का बहुत बड़ा मकाम है और आमाल के तस्फिये के तस्किये के जो सिलसिले चले आ रहे हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक, उसमें सूफियाए किराम औलिया अल्लाह का बहुत बड़ा निज़ाम है, एक पूरी उनकी सनद है। हजरत इमामुल असर मौलाना मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस तरह हमारे दीन में हदीस की सनद है, जिस तरह हमारे दीन में फिकह की सनद है, इसी तरह हमारे दीन में सूफिया औलिया अल्लाह और नेक और बुजुर्ग लोगों की सनदें भी मौजूद हैं। और इन सारे औलिया के सरखेल और पूरे आलम इस्लाम जिनकी विलायत पे मुत्तहिद और मुत्तफिक है, पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी शख्सियत है कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हजरत उन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से रमजान अल मुबारक की 10 तारीख या इसके आसपास की कोई तारीख नकल फरमाई है। इन तारीखों के बयान का मकसद हमारे मुसलमानों को ये बात इल्म में लाना है कि रबीउल अव्वल की विलादत या रबीउल अव्वल की वफात, इसमें जो यकीनी अमर है, इसमें जिस काम में यकीन हो चुका है और उसमें कोई दूसरा कौल आज तक नहीं हुआ है, वो वफात नबी है रबीउल अव्वल में। विलादत में दीगर अकवाल मैंने आप हजरात के सामने पेश किए। बहरहाल लेकिन जम्हूर उम्मत के मुहक्किकीन और हमारी उम्मत के अक्सरियत उलमा और मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन वो इस बात पे कायल हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वो रबीउल अव्वल को हुई है। जब ये बात सामने वाजे हो जाए कि विलादत और वफात दोनों रबीउल अव्वल में हो चुकी हैं, तो तो फिर जरूरी है कि तारीखों का तायुन भी कर लिया जाए, किस तारीख को आपकी विलादत बासआदत हुई और किस तारीख को आपकी वफात हुई है। इस सिलसिले में तारीख के हवाले से 100% यकीन से किसी एक दिन का मुतायन कर लेना ये उलमाए किराम ने नहीं किया है, एहतियात फरमाई है। और चंद अयाम हैं, 3 रबीउल अव्वल से लेके 9 रबीउल अव्वल तक, ये गालिबन 6 दिन बनेंगे, 6 या 7 दिन बनेंगे। 3 रबीउल अव्वल को आपकी विलादत हुई ये भी तारीख में मौजूद है, 7 रबीउल अव्वल को आपकी विलादत हुई ये भी तारीख में मौजूद है, 8 रबीउल अव्वल को आपकी विलादत हुई ये भी तारीख में मौजूद है। और जो सबसे ज्यादा मुहक्कक कौल है और जिस पे उलमा ने इत्मीनान का इजहार किया है वो है 9 रबीउल अव्वल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन वो इस्लामी हिजरी के लिहाज से 9 रबीउल अव्वल का महीने का दिन बनता है वो। और अजीब तुरफा लतीफा ये है कि मीलादुन्नबी मनाने वाले और इसके लिए बड़े शद्दोमद से तैयारी करने वाले 12 रबीउल अव्वल की ईद को हर मुसलमान के लिए फर्ज करार देने वाले, इनके बड़े और इनके यहां जो सबसे बड़े आलिम तसव्वुर किए जाते हैं, आला हजरत उनको कहा जाता है, अहमद रजा खान, उनकी अपनी तसानीफ में ये बात मौजूद है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वो 9 रबीउल अव्वल को हुई है। और हिंदुस्तान में मैंने सुना है कि जो इनके आला हजरत के आल औलाद हैं उनका जो मदरसा है, उनका जो सिलसिला है, आज भी वो ये पंफलेट छाया करते हैं, आज भी वो मुसलमानों को ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि ये 12 रबीउल अव्वल के दिन जश्न आमद रसूल जो मनाया जा रहा है ये सिरे से है ही गलत, ये हम नहीं कह रहे, ये आला हजरत ने कहा है। लेकिन इसके बावजूद जिद और इनाद या अल्लाह जाने किस वजह से मुसलमानों के ऊपर ये बात एक खास तरीके से मुसल्लत की जा रही है कि आप मानो या न मानो जश्न विलादत 12 रबीउल अव्वल को होगा। और अफसोस की बात यह है कि 12 रबीउल अव्वल को विलादत का यकीन नहीं है लेकिन 12 रबीउल अव्वल को वफात का यकीन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी और उसके लिए जश्न अगर होना चाहिए तो उससे बड़ा जो हादसा है और कायनात में क़यामत सुग़रा का जो मंजर है, मुतनब्बी अरबी के बड़े शायर हैं वो कहते हैं कि अगर दुनिया में किसी के लिए हमेशा रहना होना चाहिए था लकाना रसूलुल्लाह अहक्कु बिही, तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हकदार हमेशा की जिंदगी का इस दुनिया में कोई और नहीं था। आपके वजूद अकदस की मौजूदगी मुसलमानों के लिए कितना अजीम सरमाया था। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वअंत फीहिम, हे पैगंबर, जब आप इनके दरमियान में मौजूद रहेंगे तो अल्लाह ताला अजाब नाजिल नहीं करेंगे। आपकी मौजूदगी वो शरीयत की तालीम का अजीम जरिया था। आपकी मौजूदगी सहाबा किराम के लिए एक शेख, एक मुरब्बी, एक उस्ताज और एक रहनुमा, एक जर्नेल, एक मुबल्लिग, एक बेहतरीन मुसलिह, एक शफीक बुजुर्ग, कायनात का कोई ऐसा दर्जा नहीं था, कायनात की कोई ऐसा मकाम नहीं था जिसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए किसी और की ज़रूरत पड़ी हो। हाशा वकल्ला, आपकी मौजूदगी में उम्मती की कोई हैसियत नहीं थी। माली इब्न अबी कुहाफा अन युसल्ली बैन यदै रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अबू बकर को कहा कि नमाज पढ़ाओ, लेकिन जब आप बाहर तशरीफ़ ले गए मस्जिद में, अबू बकर फौरन मुसल्ले से पीछे हो गए और फरमाया, रसूल के होते हुए एक उम्मती को नमाज पढ़ाने की मजाल क्या है। लेकिन इन्नका मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन, ए पैगंबर, आपको भी मौत वाके होगी और आपसे पहले आपके बाद जितने इस कायनात में इंसान आए हैं वो सब के सब इस दुनिया से जाएंगे और आपकी वफात के जो मनाजिर हैं, जो तारीख है, उसको तो कोई याद ही नहीं करता क्योंकि सारे लोग जश्न में मसरूफ हैं। उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है, कोई तहकीक ही नहीं है, इसलिए कि बर्थडे मनाया जा रहा है, केक काटे जा रहे हैं और अल्लाह जाने क्या कुछ बिदआत की जा रही हैं। हालांकि विलादत के बारे में यकीन से नहीं कह सकते कि विलादत किस तारीख को हुई है, और विलादत के वक्त कुरान करीम का नुज़ूल नहीं था, विलादत के वक्त आपकी उस्वा हसना सामने नहीं थी, विलादत के वक्त आपके इरशादात सामने मौजूद नहीं थे, विलादत के वक्त आपके सहाबा की जमात नहीं थी, विलादत के वक्त आपके जहाद और तबलीग और ये सिलसिले नहीं थे, वफात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत कमाल को पहुंच चुकी थी। और आप बाकायदा सहाबा से पूछा करते थे कि मैंने अल्लाह का पैगाम, शरीयत का पैगाम, कुरान करीम का पैगाम, इस्लाम का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया है, इसको याद करो, इसको महफूज करो और सारी जिंदगी इस पर चलने की कोशिश करो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और नहीं मरना मगर ये कि तुम ईमान वाले हो, नहीं दुनिया से जाना मगर यह कि इस्लाम वाले हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ज्यादा नासाज थी और आपके ऊपर गशी आ जाती थी, बेहोश हो जाते थे। इन्ना लिल्मौत सकरात, आप फरमाते थे मौत के बड़े तकलीफ है। मौत का एक खास किस्म का जो कैफियत है वो इंसान के लिए बड़ी गरां है। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पे जो सबसे ज्यादा रहम फरमाते हैं वो जब उसकी रूह कब्ज की जा रही होती है उस वक्त अल्लाह उस पर रहम करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन से कहा, सात मशकीजों का पानी लेकर आओ, सात मशकीजों का पानी उस जमाने में बर्तन तो इस्तेमाल नहीं होते थे, तो आज भी अगर आपने देखा हो चमड़े के मशकीजे में पानी भर लेते हैं। सात मशकीजों का पानी आपने मंगवाया और आप खुद एक बड़े टब में बैठ गए, बाकायदा हदीस में, और आपने कहा ये पानी मेरे ऊपर बहाओ। तहारत मकसूद थी, ये पैगंबर के अखलाक है, ये पैगंबर का मकाम है कि रूह निकलने को है, तकलीफ शदीद है और आपको फिक्र है कि मेरी तबीयत बहाल हो जाए, बाहर जमात तैयार हो रही है, मैं जाऊं और जमात में शिरकत कर लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे क्या सहाबा ने नमाज पढ़ ली, कालो या रसूल अल्लाह ला हुम यंतज़िरूना का, हजरत नहीं नमाज नहीं पढ़ी, आपका इंतजार हो रहा है। आप उठने की कोशिश करते लेकिन आपकी तबीयत और तकलीफ की वजह से आप दोबारा से कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते थे, दोबारा आप होश में आए। हल सल्लू, नमाज पढ़ी सहाबा ने, कालू या रसूल अल्लाह ला हुम यंतज़िरूना का, नहीं हजरत नमाज नहीं पढ़ी, आपका इंतजार हो रहा है। उदउ अली व अब्बासा, बुलाओ अली को और अब्बास को, ये दोनों एक चचा हैं, दूसरे हजरत के करीबी कजन हैं, रिश्तेदार हैं, चचा के बेटे। दोनों तशरीफ लाए, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाएं और बाएं जानिब से सहारा दिया। आपको जैसे एक इंसान को सहारा दे के लिया जाता है, इस तरह लेके मस्जिद नबवी की तरफ चल पड़े। वरिजलाहु तखुत्तान अलल अर्द, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव जमीन पे बाकायदा लकीर बना रहे थे, खिंच रहे थे, तकलीफ इतनी ज्यादा थी। और आप मस्जिद में तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। पहले आपने हुक्म दिया था नमाज पढ़ा लीजिए, उस दौरान में आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो गई और आपने इरादा फरमाया कि मैं नमाज की तरफ चलूं। और ये वो मौका है जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे हट गए और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बने। आपने नमाज पढ़ी, आपकी तकबीरात हजरत अबू बकर सुनते थे और हजरत अबू बकर आपकी नमाज को आगे मुसलमानों तक पहुंचाते थे। ये आखिरी नमाज पढ़ी गई है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेदा में, पैगंबर के इत्तेदा में नमाज बहुत अजीम बात है। कायनात में इससे बड़ा शरफ, कायनात में इससे बड़ा मकाम नहीं मिल सकता कि एक उम्मती वो पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बड़े प्यारे सहाबी हैं, पैगंबर को बड़ी मोहब्बत थी इनसे। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया गया कि आप अपनी जमात के साथ चलें फलां जगह पे, इस्लाम के मुजाहिदीन की मदद की जरूरत है, बलकान का इलाका, मोता का इलाका, आज जो जॉर्डन कहलाता है, उर्दन कहलाता है। जुमे का दिन था और जुमे की नमाज करीब थी, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह हुक्म दे दिया गया कि आपने जाना है सरिया में, वो इस्लाम का लश्कर جس میں پیغمبر خود موجود ہوتے ہیں اسے غزوہ کہتے ہیں, اور وہ اسلام کا عسکری لشکر جس میں پیغمبر خود موجود نہ ہو اسے سریہ کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے یہ سوچا کہ مدینہ منورہ ہے, مسجد نبوی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہے, اور ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے. ایک روایت میں ہے مسجد نبوی میں ایک نماز 2,00,000 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے, تو کیوں نہ نماز مدینہ میں مسجد نبوی میں پیغمبر کے پیچھے پڑھ لی جائے, اور اس کے بعد پھر ہم چلیں گے جہاں ہمیں سفر کا کہا گیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کے بعد عبداللہ ابن رواحہ کو دیکھا, وہ مسجد نبوی میں موجود ہے. اینا انت یا عبداللہ, ہے عبداللہ کیا کر رہے ہو, کہاں ہو تم, میں نے تو آپ کو بھیجا تھا, یہاں کہاں سے آ گئے؟ عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ حضرت جمعہ کا دن تھا, آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا تھا, مسجد نبوی تھی, پیغمبر تھے, میں کیوں چھوڑ کے اس کو چلا جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس غفلت کی وجہ سے دیگر لوگوں سے 500 سال بعد تم جنت میں داخل ہوگے. یہ کیوں کہا گیا؟ ہم صحابہ کو غلط نہیں کہہ سکتے, اور صحابہ سارے کے سارے برحق ہیں, لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ ہماری تقسیم ہے, کسی کو کیا فضیلت دیتے ہیں کسی کو کیا فضیلت دیتے ہیں. اس سے مقصد عبداللہ ابن رواحہ کی کوئی علیاذ باللہ مذمت نہیں ہے, ہم سب سے چھوٹا صحابی جو ہے اس کے پاؤں کی جو خاک ہے اس خاک سے بھی ہم کمتر ہیں, وہ خاک ہم سے افضل ہے. لیکن اتباع سنت کتنا ضروری ہے یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پیغمبر نے خود ایک بات کہی اور اس پہ حکم فرمایا کہ عمل ہونا چاہیے, اور اس پہ عمل کرنے میں دیر ہو گئی, کسی دنیاوی وجہ سے نہیں, کسی اپنی مزوں کی وجہ سے نہیں, کسی نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں, بلکہ جمعہ کی ادائیگی کتنی بڑی عبادت ہے اس کی وجہ سے عبداللہ ابن رواحہ نے جو تاخیر کر دی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا پڑے گا. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے عمر, آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے, اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہوتی لَتَّخَذْنَاهُ عِيدًا, ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنا لیتے. یہ میں نہیں کہہ رہا, بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے, 10 سے زیادہ مقامات میں یہ حدیث موجود ہے. اور ایک یہودی آیا, اس نے حضرت عمر سے یہ کہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عرفنا ذلك اليوم, ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ آیت کون سی ہے, کہاں نازل ہوئی ہے, کب نازل ہوئی ہے, کس وقت نازل ہوئی ہے اور کس ماحول میں نازل ہوئی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان عرفات میں اپنی سفید سواری پہ سوار تھے, اور آپ کے صحابہ کرام چاروں طرف آپ کے ساتھ تھے, اللہ کو یاد کر رہے تھے. آپ نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے کہا تھا استنصت الناس, لوگوں کو خاموش کراؤ, मैं कोई बात करना चाहता हूं, और वहां आपने ये आयत तिलावत फरमाई थी, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती व रदीतु लकुम अलइस्लाम दीना। अल्लाह ने अपनी नेमत कामिल कर दी है, अल्लाह ने अपना दीन कमाल को पहुंचा दिया है, अल्लाह ने तुम पे इतना अजीम एहसान किया है कि तमाम उम्र सजदे में रहो, इस एहसान का बदला नहीं चुका सकते कि अल्लाह ने हमें और आपको इस्लाम की रहनुमाई दी है। अल्लाह ने हमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है, अल्लाह ने हमें कुरान वाले बनाया है, अल्लाह ने हमें हदीस वाले बनाया है, अल्लाह ने हमें फिक्र वाले बनाया है। इस नेमत का शुक्र पूरा कैसे होगा, इंसान की बस की बात नहीं। हजरत उमर ने यहूदी से कहा, कोई जरूरत नहीं है ईद मनाने की। इस आयत का जो असल मकसूद है, जो असल मंशा है, वो ईद नहीं है, वो तो इस्लाम की तालीमात की तकमील का ऐलान है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐलान आज भी कायम और दायम है। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारा जो दीन इस्लाम है, इसमें कितने त्योहार मुकर्रर किए गए हैं, कितने मजहबी दिन मुकर्रर किए गए हैं, कितने ईद मुकर्रर किए गए हैं, इस पे एक नजर डालना बहुत जरूरी है। और इसके बाद ये जानना जरूरी है कि ये जो ईदें हैं, ये जो इस्लामी त्योहार हैं, इसका पस मंजर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। हमारे इस्लाम के मजहबी दिन, ईद उल फितर का दिन है यकुम शव्वाल को, हमारे इस्लाम का मजहबी त्योहार ईद उल अधा का दिन है 10 ज़िलहज्जा को, हमारे इस्लाम का मजहबी दिन रमजान अल मुबारक के तमाम रोजे हैं, हमारे इस्लाम के मजहबी अय्याम में ऐसे तमाम आमाल जिसके अंदर बाकायदा कोई इबादत आई हो, या जिसके अंदर बाकायदा कोई नमाज आई हो, या जिसके अंदर बाकायदा कोई हुक्म आया हो, उसका पस मंजर क्या है, वो देखना बहुत जरूरी है। तारीखी वाकयात या तारीखी पस मंजर से हमारी किसी ईद का ताल्लुक नहीं है। मसलन ईद उल फितर जो मनाई जाती है, वो इसलिए मनाई जाती है कि उससे पहले पूरा एक महीना मुसलमान अल्लाह की इबादत कर चुका होता है, पूरा एक महीना रोजे रख चुका होता है, पूरा एक महीना तरावी पढ़ चुका होता है। अब ये शुक्र का मकाम है, अब ये अल्लाह की इस नेमत के एहसास का मकाम है, तो फरमाया आज के दिन ईद है, ईद मनाइए और ईद के ऊपर अमल कर लीजिए, ईद की तालीमात पर अमल कर लीजिए, और ईद के जितने भी तमाम मसाइल हैं, अहकाम हैं, पूरी उम्मत उसमें मुत्तफिक है। यह हमारा दावा है, आप जाएं तूल व अर्ज में मुसलमानों के जितने मुल्क हैं वहां चले जाएं और मुसलमानों से ईद उल फितर के बारे में पूछें, वो एक दिन आपके सामने ला के रखेगा यकुम शव्वाल का, के इस दिन ईद होती है। दूसरी बात, ईद उल अज़हा कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक बेशक है, लेकिन ये आपको किसने कहा कि ये इसी दिन हुआ था, ये तारीख से साबित नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अपने साहबजादे इस्माइल को अल्लाह के लिए ज़बह कर लेना, ये 10 ज़िलहज्जा को हुआ हो, ये पूरे ज़खीरा इस्लाम के बायोडेटा में कहीं ये बात मौजूद नहीं है। हाँ, तारीखी पस मंजर जरूर है, लेकिन ईद उस लिए नहीं मनाई जा रही, बल्कि ईद वो इसलिए मनाई जा रही है کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جب ہمیں دین عطا کیا ہے, اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارا قبلہ کعبہ بنایا ہے, اللہ نے ہمیں کعبہ کے امتی بنایا ہے, اللہ نے ہمیں حج اور عمرے کا حکم دیا ہے, اللہ نے ہمیں کعبے کے طواف کا حکم دیا ہے, اللہ نے ہمیں صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کا حکم دیا ہے, یہ تمام عبادات میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے. من حج ولم يفسق ولم يرفث ولدك يوم رجع ولدته امه او كما قال صلى الله عليه وسلم. آپ نے فرمایا جس نے حج کیا اور حج میں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, حج میں اس نے کوئی لڑائی نہیں کی, حج میں اس نے کسی کو کوئی گالی نہیں دی, گویا وہ گھر پہ آئے گا ایسے آئے گا جیسے آج وہ پیدا ہوا ہے, گناہوں سے بالکل صاف ستھرا دلہا دلایا ہوگا. حج کی عبادت 9 ذی الحجہ کو مکمل ہو جاتی ہے, عرفہ ہو جاتا ہے. اب 10 ذی الحجہ کو مسلمان کو حکم ہے کہ عید کی نماز پڑھی جائے گی, عید الاضحیٰ ہوگی, اور پورے عالم کے مسلمان عید الاضحیٰ کے بارے میں متفق ہیں. اسلامی تعلیمات اور اسلامی عبادات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں پورے عالم متفق ہوتا ہے, اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عبادت واقعتاً اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عبادت صحابہ نے کی ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عبادت پورے عالم میں اس طرح پھیل چکی ہے کہ یہ سنت کے لحاظ سے, ہسٹری کے لحاظ سے, تاریخ کے لحاظ سے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہوگا. اس کے برعکس جو بدعت ہوتی ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص طبقے میں آپ کو نظر آتی ہے. جو بدعت ہوتی ہے وہ ایک خاص لوگوں کے درمیان میں اس کا چرچا ہوتا ہے اور دیگر لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے, اس لیے وہ اس پہ بہت زیادہ شد و مد کرتے ہیں, دیگر لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, اس لیے وہ لوگوں کو بہت زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تقریریں, جلوس اور برانگیختہ کرنا کرتے ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں, ایک طرف غور کیجئے گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتنے عرصے تک صحابہ کرام دنیا میں موجود رہے, یہ جاننا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال تک صحابہ کرام عراق میں, شام میں, فلسطین میں, مصر میں, اور اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے زمین کے طول و عرض میں صحابہ کرام موجود رہے. 100 سال تک صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد موجود رہے ہیں, اور ہمیں زیادہ عمل کا شوق ہے یا صحابہ کو شوق تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, یہ جو صحابہ ہیں یہ عبادت کے اتنے شوقین ہیں کہ سجدے میں ہر وقت رہتے ہیں اور ان کے چہروں پہ سجدے کے آثار نظر آتے ہیں. کتنے صحابہ تھے؟ لاکھوں کی تعداد میں, 125,000 کے قریب صحابہ. ان میں سے کسی ایک صحابی کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ فلاں دن پیغمبر موجود تھے, پیدا ہوئے تھے, ہمیں تو تاریخ بھی صحیح سے معلوم نہیں ہے. ان کو تو تاریخ بھی معلوم تھی یقیناً. تو آخر اگر اسلام کے اندر کسی کی ولادت یا کسی کی وفات کے ساتھ اسلامی تہوار کا تعلق ہوتا تو یہ ولادت اور وفات جو پیغمبر کی ہے, خدا کی قسم دنیا میں اس سے زیادہ اہمیت کا دن کوئی اور نہیں ہوتا. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, आपका जाना, आमद ही इस्लाम और दुनिया के लिए कितनी बड़ी सहादत की बात है, और आपका दुनिया से वापस चले जाना इतने बड़े गम की मिसाल है कि जो हिम्मत और इस्तकलाल के पहाड़ जैसे सहाबी उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी कुछ देर के लिए अपने होश और हवास खो बैठे थे, परेशान हो गए थे। लेकिन उसी उमर के सामने कितनी दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत गुजरा और यौम वफात गुजरा, उन्होंने तो अमल नहीं किया कोई ऐसा जो आज किया जा रहा है। खुलफाए राशिदीन को देखें, आशरा मुबशरा को देखें, बद्री सहाबा को देखें, उहद के शुरका को देखें, बैत रिजवान के सहाबा को देखें, हुदैबिया के सहाबा को देखें, फतह मक्का के सहाबा को देखें, अहजाब व खंदक वाले सहाबा को देखें, तबूक के सफर वाले सहाबा को देखें, बनी मुस्तलक के सहाबा को देखें और बनी जुहैना के सहाबा को देखें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पूरा कबीला मुसलमान हुआ, उन सहाबा को देखें, बहरेन के सहाबा को देखें, कोई तो बताओ ना कोई होगा जिसने विलादत मनाई होगी, जिसने वफात मनाई होगी। हाशा वकल्ला 100 साल तक ऐसा नहीं हुआ है। और ये कोई हमारा दावा नहीं है, ये एक तारीखी हकीकत है। कहते हैं कि मिलाद नहीं मनाते, इसलिए मिलाद नहीं मनाते कि 100 साल तक किसी सहाबी ने मिलाद नहीं मनाई है, बात खत्म हो गई। और करने के काम ये नहीं थे, ये जो 100 साल तक सहाबा किराम मौजूद रहे हैं, इन्होंने किस चीज पर तवज्जो दी है, ये आपको लिए जानना जरूरी है। सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने ईमान और अमल, इन दोनों चीजों पर भरपूर तवज्जो दी है। जहां होते थे, आप हदीस की किताबें उठा के देखें, किताबें भरी पड़ी हुई हैं। अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उस्मान जैसे सहाबी से लेके छोटे सहाबा हजरत अनस, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर जैसे सहाबा तक अपने शागिर्दों को कहते थे, सारे जमा हो जाओ, मैं तुम्हें पैगंबर की तरह वुजू करके दिखाता हूं, मैं तुम्हें पैगंबर की तरह नमाज पढ़ के दिखाता हूं, मैं तुम्हें पैगंबर की तरह तमाम आमाल करके दिखाता हूं। और जहां पैगंबर की सुन्नत के खिलाफ होता था, जहां इस्लाम के खिलाफ होता था, वहां पे वो सहाबा किराम हरगिज खामोश नहीं रहते थे। वहां सहाबा किराम दीन इस्लाम की तालीमात को हमेशा सामने रखते थे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, पता चला, सीधी सी बात है, साफ सा मसला है कि हमारे इस्लाम की बुनियाद, हमारे इस्लाम का फलसफा, वो तारीखी वाकयात या किसी के विलादत या किसी के मरने के ऊपर नहीं है। हमारे दीन की बुनियाद और हमारे इस्लाम की फिलॉसफी, वो इंसान के अमल, इंसान की इस्लाह, इंसान को इंसान बनाना और इंसान को नेक इंसान बनाने के ऊपर है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहिम का इंतकाल हो गया, लोग बहुत गमगीन थे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, वइन्ना बिफिराकिक लहज़ीनुन या इब्राहिम, इब्राहिम तुम्हारे जाने से बहुत गम हुआ है। इत्तफाक की बात है कि उन्हीं दिनों में सूरज ग्रहण हो गया, लोगों ने कहा पैगंबर के साहबजादे का इंतकाल हुआ और सूरज भी गमगीन है, रो रहा है, कितनी तकलीफ की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आप मिंबर पे तशरीफ लाए और आपने फरमाया, या अय्युहन नास इन शम्स वल कमर आयतान मिन आयातिल्लाह, लोगों बात सुनो, ये चांद और सूरज अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह की कुदरत है। वहुमा ला यनकसिफान लिमौत अहदिन वला लिहयातिही, और न किसी के मौत पे ये ग्रहण होते हैं, न किसी के जिंदा होने पे ये ग्रहण होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को तौफीक दे कि वो सहाबा किराम ताबईन किराम आइमा किराम मुहद्दिसीन किराम फुकहाए किराम के मज़ाहिब उनके रास्तों पे चलने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमारे आपके आमाल को हिफाजत करने की तौफीक दे। और जो लोग अपनी नासमझी में मुश्किलात में या जहालत की वजह से बेदीनी का शिकार हो रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सवाल पूछा है, अगर किसी की नमाज जुमा कज़ा हो जाए तो वो कितनी रकात नमाज पढ़ेगा? जोहर की नमाज की कज़ा करनी पड़ेगी। अगर किसी की भी मसलन खुदा ना खास्ता किसी ओज़र की वजह से या गफलत की वजह से किसी भी वजह से जुमे की नमाज अगर किसी की कज़ा हो जाए तो अब ये जुमे की नमाज अदा नहीं होगी। जुमे की नमाज बस वो जुमे के वक्त में ही होती है। इसके बाद जब भी आप उसकी कज़ा करेंगे तो चार रकात जोहर की नमाज की कज़ा आपको करनी पड़ेगी। पूछा है कि रबीउल अव्वल की मुनासिबत से खाना पकाकर लोगों को खिलाना कैसा है? देखिए, हर वो खाना जो अल्लाह के लिए हो, अल्लाह की रज़ा के लिए बनाया गया हो और अल्लाह की खुशनूदी और रजामंदी के लिए फ़ुकरा मसाकीन रिश्तेदारों को किसी को भी खिलाया जाए वो जायज़ है। और वो खाना जो गैर अल्लाह के लिए बनाया गया हो, वो खाना जो अल्लाह के सिवा किसी और की खुशनूदी के लिए बनाया गया हो, वो खाना जो अल्लाह के सिवा किसी और की तवज्जुहात हासिल करने के लिए बनाया गया हो, फलां के नाम की नज़र है, फलां के नाम की नियाज है, ये चीज़ें बिल्कुल जायज़ नहीं हैं। अल्लाह ही हर जगह हाजिर नाजिर है और अल्लाह ही दुआ कबूल करता है और अल्लाह ही मुसलमान की मुश्किलात हल करता है। अल्लाह की मखलूक कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय इसके कि हम उनको वसीला बना सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए मुसलमानों, अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ ले जाने वाले लोगों से मोहब्बत करो। ये हुक्म है कुरान करीम में। ये नहीं है कि अल्लाह की तरफ ले जाने वालों को सजदा शुरू कर दो। इसलिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कोई हर्ज नहीं है कि एक मुसलमान अपने घर में अच्छा खाना बनाए, खुशी का इजहार करे कि आज के दिन पैगंबर के ईसाले सवाब के लिए मैंने ये खाना बनवाया है। लेकिन आपको देख के दूसरे लोग क्या समझेंगे कि ये भी साहब भी जो है इधर मिलादुन्नबी में शामिल हो चुके हैं। इसलिए इस तरीके से हो कि वजाहत साथ हो कि आपका अकीदा वो नहीं है जो अकीदा उमूमन माना जाता है। पूछा है कि खुला लेने वाली खातून की औरत की इद्दत कितनी होती है? खुला लेने वाली खातून की इद्दत तीन हैज है। और अगर उस खातून को किसी वजह से हैज ना आता हो तो तीन महीने इंतज़ार करना होगा। और अगर तीन महीने भी नहीं है बल्कि खातून हमल से है, प्रेग्नेंट है, तो ऐसी सूरत में वज़ह हमल तक किसी और से इसका निकाह जायज़ नहीं है जब तक कि ये बच्चे की विलादत ना हो जाए। और इसी के साथ साथ जो खुला होता है इसमें तलाक़ बाइन होती है और तलाक़ बाइन जो है इसमें रुजू का हक नहीं होता। एक दफ़ा जब तलाक़ बाइन हो गई, तजदीद निकाह हुए, अलग मसला है, लेकिन उसमें रुजू का हक जो है वो शौहर को हासिल नहीं होगा। पूछा है, आज़ा अतिया करना और आज़ा की पेवनकारी करना जबकि बाद लोग इसकी इजाज़त देते हैं, क्या ये जायज़ है? नहीं, इस तरह मसला नहीं है। मसला इस तरह है कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب کے میں یعنی اس کتاب کا نام ہی غالباً اعضا کی پیوند کاری, یہ نام ہے اس کا. اس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ جب کسی مسلمان کی زندگی کو خطرہ ہو جائے تو زندگی بچانے کے لیے خنزیر کا استعمال بھی جائز ہے, اور زندگی کے بچانے کے لیے شراب کا استعمال بھی جائز ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر کسی کی موت یقینی ہو اور بچنا اس کا پیوند کاری سے یقینی ہو تو پیوند کاری کی اجازت بامر شدید مجبوری گناہ سمجھتے ہوئے دی جا سکتی ہے. جہاں تک یہ لوگوں کا تعلق ہے کہ جی اپنی آنکھ اس کو دے دی, اپنا ہاتھ اس کو دے دیا, یہ آپ کا ہے ہی نہیں ہے تو اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر آپ کا ہوتا تو آپ مرتے ہی کیوں, سوال یہ ہے. مر گئے نا تو اس لیے پتا چلا کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ فلاں کو دے دو, اللہ نے اس کو بھی تو اپنی آنکھ دی ہے, اس کو بھی تو اپنا ہاتھ دیا ہے, اور اگر اس کے نصیب میں اس کی خرابی ہے تو ہے, اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اس لیے آپ اپنے اعضاء کو مرنے سے بعد ٹکڑے ٹکڑے نہ کروائیں, خیر خیریت سے قبر پہنچ جائیں. جی کیا ہے, دعائیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. راتم اور اہل خانے کے لیے بھی تمام مسائل سے عافیت کی دعا, اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائیں. پوچھا ہے کہ واسطہ فی العروض واسطہ فی ثبوت کے مابین سلیس عوامی فہم کا فرق بیان کر دیں. واسطہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنیا کے ہوتے ہیں, ہمیں گرمی لگ رہی ہے, ہم نے پنکھا چلایا, اب کوئی کمک لیے کہہ دے کہ آپ پنکھے سے مدد مانگ رہے ہیں, نہیں, پنکھا سبب ہے. سبب دنیا میں ہر قسم کا ہوتا ہے, آپ حج پہ نہیں جا سکتے بغیر جہاز کے, عمرے پہ نہیں جا سکتے, یہ اسباب ہیں, اور مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے, یہ دونوں میں واضح فرق ہے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ, ولا ہمّا الا فرجتہ, ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے دعاؤں کا کہا ہے, کسی کی طبیعت ناساز ہے, کسی کے کام کاج کی کمی ہے, کسی کے اولاد کے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے, مشکلات آسان فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے, پاکستان کی حفاظت فرمائے, یہاں کے طلباء علماء خصوصاً جامع عربی احسن العلوم کے اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی مدد و نصرت فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی ڈی ایس پی صاحب تشریف لے آئیں, آگے نکاح والے آگے آ جائیں, ہٹاؤ. آئیے حضرت جی. اللہ کیسی طبیعت ہے آپ کی جی؟ خیر آفیت سے. وعلیکم السلام. دلہا صاحب آئے ہوئے آئے ہیں, بس ان کو یہاں خدمت میں پیش کریں ان کو. اللہ 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 کا شکر ہے جی, الحمدللہ جی, دعائیں ہیں آپ. آپ کے نکاح فارم فل کیا آپ نے؟ ہاں وہ منگوا لیجیے جی, فارم لے آؤ. ظاہر ان کے لیے ٹوپی بھی لے آؤ, ایک جلدی سے ٹوپی لے آؤ. جی نہیں, اصل میں یہ بہت ہی مبارک لمحہ ہے. ہم جو نکاح کرتے ہیں, جی جی ہم جو نکاح کرتے ہیں, یہ نکاح بھی سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور سر کا ڈھک لینا خاص طور پہ عبادت میں یہ بھی سنت ہے. وعلیکم السلام, بیٹھیں گے تشریف. اللہ انشاءاللہ آپ کا نکاح ہے آج, اللہ مبارک کرے انشاءاللہ. لائیے